وسلم: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. سورة الألق کا ترجمہ کل ہم نے لفظی ترجمہ مکمل کر لیا تھا، تھوڑی بہت اس کے اندر ہم نے گرامر کری تھی، لیکن اب گرامر کو ہم کم ٹچ کریں گے اس والی کلاس کے اندر، کم از کم تین اسینشلس کی جو کلاس ہے اس میں گرامر بہت کم کریں گے، ٹھیک ہے. خلاصہ تفسیر ہم نے کل شروع کر دی تھی، تو اس کے اندر ہم نے صرف پہلا پیراگراف ہی پڑھا تھا کہ جس میں انہوں نے فرمایا تھا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے غار حرا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس کو پڑھیں اقرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے سے انکار کیا اور فرمایا ما انا بقاری، تو جبرائیل امین نے تین مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دبا کر کے چھوڑا، اور تیسری دفعہ چھوڑنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے پھر آیات کی تلاوت شروع کر دی، ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں کل تھوڑی تفصیل سے بات کری تھی کہ تین مرتبہ جو دبانا ہے اس کے بارے میں ہمارے مشائخ نے کیا فرمایا کہ کیوں تین دفعہ دبایا تھا، اس سے کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر تبدیلی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہلے ایک دم اپنے آپ کو ایکسکیوز کر رہے تھے اور اس کے بعد پھر یہ ایکسکیوز کرنے کا معاملہ ختم ہو گیا، اور اس وحی کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو حضرت اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچے. اس کو ہم رپیٹ نہیں کریں گے، آگے چلتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا، تو یہ خلاصہ تفسیر ہی چل رہی ہے، اور اقرا بسم ربک الذی خلق، اس میں ابھی صرف انہوں نے اقرا کی تفسیر کری تھی، ٹھیک ہے. اب بسم ربک الذی خلق کی تفسیر پھر بعد میں شروع ہو رہی ہے دوسری لائن میں اس پیراگراف کے. فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا جس میں اس وقت کی نازل ہونے والی آیتیں بھی داخل ہیں، یعنی ابھی جو پانچ آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور اس کے بعد جو اور آیتیں اور سورتیں نازل ہوں گی، تو اس کو اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے، ٹھیک ہے. یعنی جب پڑھیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجئے، جیسا کہ اس آیت میں اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ میں قرآن کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہوا ہے، اور ان دونوں امر سے جو اصل مقصود ہے یعنی توکل و استعانت وہ تو واجب ہے، اور زبان سے کہہ لینا مسنون و مندوب ہے، اور وہ اصل مقصود کے اعتبار سے اس آیت کے نزول کے وقت بسم اللہ کا آپ کو معلوم ہونا ضروری نہیں، لیکن بعض روایات میں اس صورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نازل ہونا بھی آیا ہے، جیسا کہ انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، تو کیا پڑھیے؟ وہ یہ پانچ آیات جو ابھی نازل ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ جو آیات نازل ہوں گی ان کو رب کے نام کے ساتھ پڑھیے. تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ قرآن کے اندر جو ہے نا اعوذ باللہ پڑھنے کا تو حکم قرآن میں ہی صراحتاً موجود ہے، کہ ایک آیت ہے اذا قرأت القرآن، کہ جب تو تلاوت کرے قرآن کی فاستعذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ، یعنی اعوذ باللہ پڑھ، ٹھیک ہے. تو یہ قرآن کا حکم ہے، تو بسم اللہ پڑھنے کا حکم یہاں پر ہے، لیکن بسم اللہ جو ہے وہ پڑھتے کیسے ہیں؟ تو یہ جو ہے نا وہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حدیث یہاں انہوں نے لکھی ہے عربی کے اندر، ٹھیک ہے، کہ اخرجہ الواحدی، واحدی نے اس کو تخریج کیا عن اکرمہ، یعنی اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عن اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ والحسن رحمۃ اللہ علیہ انہما قالا اول ما نزل بسم اللہ الرحمن الرحیم، دونوں نے فرمایا یعنی اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ اور الحسن رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو نازل ہوا اول ما نزل بسم اللہ الرحمن، سب سے پہلے جو چیز نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، و اول سورۃ اقرا، ٹھیک ہے، اور سورہ اقرا کی اول والا حصہ نازل ہوا، ٹھیک ہے. یعنی صرف سورہ اقرا بسم ربک الذی نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی، ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ واخرجہ ابن جریر وغیرہ عن وغیرہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہ قالا، اور اس کو یعنی اس حدیث کو تخریج کیا. تخریج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کو جو ہے وہ کہاں سے لیا، ٹھیک ہے. تو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ उन्होंने और दूसरों ने वगैर ही, यानी उनके अलावा औरों ने भी इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लिया। अन्नहु काला, के उन्होंने फरमाया, अव्वलु मा नुज़िला मा नज़ला जिब्रीलु अलैहि सलाम अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के सबसे पहले जो जिब्रील अलैहि सलाम ने नाजिल किया नबी अलैहि सलाम के ऊपर, काला मा नज़ला, अव्वलु मा नज़ला जिब्रील अलैहि सलाम अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो क्या था, काला या मोहम्मद। ठीक है, तो जिब्रील अलैहि सलाम ने फरमाया, ए मोहम्मद इस्तईद, पनाह मांगो, सुम्मा कुल बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, फिर कहो बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। ठीक है, तो बकायदा जिब्रील अलैहि सलाम ये दोनों हुक्म लेकर के आए थे। ठीक है, तो फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि तुम औजुबिल्लाह पढ़ो, फिर फरमाया तुम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम पढ़ो, यानी पूरा पढ़ के सुनाया कि तुम ऐसे बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम पढ़ो। ठीक है, तो औजुबिल्लाहि मिनश शैतान रजीम के अल्फाज मनकूल नहीं है, लेकिन औजुबिल्लाह जो है वो एक कह सकते हैं अंडरस्टूड बात है कि औजुबिल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की। अब किससे पनाह मांगता हूँ, शैतान मरदूद से। ठीक है, तो हो सकता है इसके अल्फाज जो है वो कहीं और बता दिए गए हों, या ये के अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से अपनी अंडरस्टैंडिंग से पढ़ लिया हो। लेकिन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जो है ये बाकायदा सराहतन अल्फाज की शक्ल में नाजिल हुआ कि ऐसे पढ़िए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसलिए कि ये जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है ना, ये नबी अलैहि सलाम से पहले लोग नहीं जानते थे इसको। ठीक है, लोग क्या पढ़ते थे, अल्लाह का तसव्वुर पहले भी था, इवन मुशरकिन में भी अल्लाह का तसव्वुर था, तो अल्लाह के नाम को तो ये अरबी में जानते थे पहले से। ठीक है, लेकिन क्या करते थे, ये कहते थे बिस्मिकल्लाहुम्मा। ठीक है, के अल्लाहुम्मा, ओ अल्लाह तेरे नाम से। ठीक है, इस तरह से पढ़ते थे। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जो है ये सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ही नाजिल हुई, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही गोया इसको इंट्रोड्यूस कराया लोगों के सामने। ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहि सलाम ने बताया, जैसे कि इस हदीस के अंदर हजरत इब्ने अब्बास ने बताया। ठीक है, और ये हदीस जो है वो रूहुल मानी के अंदर मौजूद है कि अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह की जो तफसीर है रूहुल मानी, उसके अंदर ये है। वह इन और इन आयतों में जो किरात को इस्म इलाही के साथ इफ्तिताह करने का हुक्म हुआ है, इस हुक्म में खुद इन आयतों का दाखिल होना ऐसा है कि जैसे कोई शख्स दूसरे से कहे कि इस्मा मा अकूलु लका, यानी सुनो, यानी मैं जो कुछ तुमसे कहूँ तू उसको सुन। ठीक है, तो अगर कोई किसी से ये कहते हैं ना मैं जो कुछ तुमसे कहूँ तू उसको सुन, तो खुद इस जुमले के सुनने का हुक्म करना भी उसको मकसूद है। ठीक है, यानी कि मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ वो भी तुम सुनो, और उसके बाद जो मैं तुम्हें कहूँगा वो भी तुम सुनो। ठीक है, तो इस्मा मा अकूलु लका जो है ये भी आप सुनाना चाहते हैं उस बंदे को। ठीक है, तो इसी तरीके से इसके अंदर भी इक़रा का लफ्ज जो है ना, ये भी अल्लाह ताला सुनाना चाहते हैं इंसानों को, तो इस वजह से इकरा भी जो है ना वो भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया, और बिस्म रब्बिकल लज़ी ये भी इसमें शामिल कर लिया गया, जो कि अल्लाह ताला ये नहीं कि कमांड अलग दे रहे हैं और फिर उसके बाद कंटेंट आ रहा है जिसके बारे में कमांड दी जा रही थी, बल्कि कमांड जो है ना वो इटसेल्फ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कंटेंट, द कमांड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कंटेंट। ठीक है, तो इस तरीके से इकरा का जो कमांड है वो खुद कंटेंट का हिस्सा बन गई, यानी खुद कुरान का हिस्सा बन गया। तो इसकी मिसाल उन्होंने इस्मा मा अकूलु लका की मिसाल से दिया। तो कहते हैं कि खुद इस जुमले के सुनने का हुक्म करना भी उसको मकसूद है, बस हासिल ये होगा कि ख्वाह इन आयतों को पढ़ो या जो आयात बाद में नाजिल होंगी उनको पढ़ो, सबकी किराअत इसमें इलाही से होना चाहिए, और आपको बइल्म ज़रूरी मालूम हो गया कि यह कुरान और वही है, यानी आपके दिल के अंदर ये इदराक पैदा हो गया, एहसास पैदा हो गया कि ये सब कुछ जो ये फरिश्ता आकर के मुझे सुना रहा है ना, ये अल्लाह ताला का कुरान है और ये वही है। ठीक है, यानी ये नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शशोपंज में मुब्तला रहे कि ये मुझे क्या कह गया है, ये कौन था, ये मुझे क्या कह के चला गया है। ठीक है, ये शशोपंज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नहीं था। ठीक है, एक मिनट और लिखिएगा। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी शशोपंज में उब्तला नहीं थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर ये हकीकत अल्लाह ताला ने डाल दी कि ये कुरान और वही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक इंटरेस्टिंग बात करी कि हदीसों में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाना और वरका इब्ने नौफल से बयान करना आया है, वो बवजह शुभो के नहीं था, बल्कि खौफ व हैबत वही से इस्तेरारी था, ठीक है। यानी हदीसों में आया ना कि आप डर गए और आप जो है वो जो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास पहुंचे और फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मेरे ऊपर मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे सर्दी लग रही है, मुझे चादर ओढ़ा दो। यानी कपकपी तारी हो गई थी, सर्दी लगनी शुरू हो गई थी, हत्ता कि खदीजा ताला अन्हा को कम्बल ओढ़ाना पड़ा था, ठीक है। तो ये जो कपकपी तारी हुई थी, ये इस वजह से नहीं कि पता नहीं कौन आ गया है, वो क्या मुझे करके चला गया है, ये सब नहीं था, बल्कि ये फीलिंग या ये यानी ये नॉलेज कि अल्लाह ने मेरे ऊपर अपना कलाम नाजिल किया है, इसकी हैबत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिसकी वजह से कभी तारी हो गई थी, ठीक है। तो ये वही का एक असर था जो कि इंसान के ऊपर होता है अगर उसका जो दिल है ना वो पाकीजा हो, उसका दिल इस वही को कबूल करने की सलाहियत रखता हो ना, तो उसके ऊपर ये हैबत तारी होती है। जैसे कि आप खुद ही देखते हैं कि एक गुनाहगार इंसान वो खड़े होकर कुरान की तिलावत सुन रहा होता है, उसके उसके कानों पर जू नहीं रेंगती, वो टस से मस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता उसको, कुरान सुन रहा है, अल्लाह का कलाम सुन रहा है, उस अल्लाह के कलाम के अंदर कयामत के हालात सुन रहा है, जन्नत के बारे में सुन रहा है, जहन्नम के बारे में सुन रहा है, लेकिन कुछ एहसास नहीं हो रहा। और दूसरा शख्स जो है वो खड़े होकर अल्लाह का कुरान सुनता है, उसके ऊपर कपकपी तारी हो जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसकी आंखों से आंसू टप टप गिरना शुरू हो जाते हैं। तो भाई क्या फर्क है, दोनों ही अल्लाह का कुरान सुन रहे हैं, तो क्या फर्क है? फर्क जो है वो इन दोनों के रिसेप्शन के अंदर है कि इस बंदे का दिल जो है वो इतना कसीफ हुआ हुआ है, इतना गुनाहों की लेवल इसके ऊपर चढ़े हुए हैं कि कुरान इसके दिल के ऊपर असर नहीं कर रहा, ठीक है। तारीखी के अंदर नूर दाखिल नहीं होता ना, अगर आप ब्लैक चादर किसी चीज के ऊपर चढ़ा दें तो आप लाइट जो होती है वो बाहर से उसके अंदर नहीं दाखिल होगी, लेकिन दूसरा शख्स जो है उसने अपने दिल के ऊपर से गुनाहों की स्मेल को उतारा हुआ है, तो अब कुरान जो है वो डायरेक्ट जा करके उसके दिल को हिट करता है और उसके ऊपर जो है वो असरात हो जाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल यही मामला था। एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने चूंकि नबूवत के लिए कबूल पसंद कर लिया था, तो निस्बत इनकासी तो पहले ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली हुई थी, ठीक है। यानी आईने की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मुबारक जो है वो शफाफ था। फिर उसके बाद जिब्राइल अलैहि सलाम के तवज्जो डालने से तीन मरतबा जो भींचा, तो उससे जो है वो निस्बत इत्तेहादी तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लेवल पहुंच गई। अब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का कुरान मिला है, तो फिर तो यही होना चाहिए था ना, जैसे कि हुआ, ठीक है। तो उसके अंदर कोई यानी ना समझ में आने वाली बात तो नहीं है। तो ये खौफ जो था ये हैबत वाला खौफ था, ये जो है वो अननोन चीज से तकलीफ पहुंचने वाला खौफ नहीं था, ठीक है। इन दोनों खौफों के अंदर फर्क होता है। तो फरमाया कि वही से यानी खौफ और हैबत वही से इस्तरारी था, यानी एक इस्तरार की कैफियत ही, बेचैनी की कैफियत के, बेइत्मीनानी की कैफियत के भाई मेरे ऊपर वही अल्लाह ताला ने नाजिल कर दिया। और वरका से बयान करना मजीद इत्मीनान व ज्यादत ईकान के लिए था। वरका से बयान करना मजीद इत्मीनान व ज्यादत ईकान के लिए था, यानी एक इत्मीनान हो जाए ना, सेल्फ एश्योरेंस मिल जाए बात करके, और ईकान यानी यकीन जो है वो मजीद बढ़ जाए, क्योंकि यकीन जो है वो बढ़ सकता है, मजीद बढ़ सकता है और बढ़ सकता है, तो यकीन के बढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेशक कितना ही अच्छा यकीन था, लेकिन उसको और भी बढ़ाने में की गुंजाइश मौजूद थी, तो वो वरका से बात करके ज्यादत ईकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब हुआ। अच्छा, ना कि अदम ईकान के सबब, यानी यकीन के ना होने की वजह नहीं बनी थी वरका के पास जाने की, क्योंकि हम कहते हैं ना जिस किसी चीज़ के बारे में हम बेयकीनी का शिकार होते हैं तब हम किसी के पास जाते हैं, किसी अपने से ज्यादा नॉलेज वाले बंदे के पास जाकर के पूछते हैं, तो वो तो बेयकीनी की वजह से होता है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेयकीनी की वजह से नहीं गए, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऑलरेडी यकीन था, बस उस यकीन को मजीद बढ़ाने के लिए वरका बिन नौफल के पास गए थे। तो फरमाया कि और मुतअल्लिम से अबजद शुरू कराने के लिए कहता है कि हाँ पढ़, बस इससे तकलीफ माला युताब लाजिम नहीं आती, है। अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, इसके अंदर उर्दू है अगरचे के, वैसे है तो नहीं कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन हमारी चूंकि उर्दू के साथ वाकफियत और ज़्यादा कम हो गई है इस दौर के अंदर, तो इस वजह से हमें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। वरना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की जो जो वाकई कॉम्प्लिकेटेड उर्दू थी इस दौर के अतबार से, उसको ऑलरेडी उन्होंने आसान जुबान में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये जुमला जो है वो फरमाया कि मुअल्लिम यानी जो पढ़ाने वाला होता है, वो मुतअल्लिम से यानी जो तालीम हासिल करने वाला होता है उससे अबजद, अबजद का मतलब क्या होता है, अलिफ बा जीम दाल, ठीक है, यानी हरूफ तहजी जो शुरू करता है ना, कायदा शुरू करता है बच्चा, ठीक है, तो वो अबजद शुरू करता है। अबजद का मतलब अलिफ बा जीम दाल, यानी बिल्कुल यानी इब्तदाइया। तो जब अबजद शुरू कराने के लिए कि वक्त कहता है कि हाँ पढ़, तो बच्चे को जो वो कह रहा होता है ना कि हाँ पढ़, तो उसका मतलब ये को थोड़ी होता है कि बच्चे को जो है वो तकलीफ देना चाह रहा है, जिसका वो बच्चा जो है मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तकलीफ माला युताक, यानी ऐसी तकलीफ देना मकसद नहीं है कि जिसका कि वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो यही कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इस तरीके से जो पढ़ने के लिए कहा, या जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से जो पढ़ने के लिए कहा, तो मकसद ये नहीं था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ऐसी तकलीफ पहुंचाना कि जिसके के वो ताकत नहीं रखते हों। तो ये माला तकलीफ माला युताक लाजम नहीं आती, ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। और आपका उजर फरमाना, ठीक है, यानी आप सरसन में जो उजर फरमाया कि जी माँ ना बिकारी, तो ये किस वजह से था फिर, ठीक है, यानी जब नबी सरसन के पास ताकत ही नहीं थी पढ़ने की, तो फिर अल्लाह ताला ने ऐसे पढ़ने को क्यों कहा, ठीक है, ऐसा बोझ क्यों डाला। तो आप सरसन ने जो उजर फरमाया था ना, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो उजर था ये या तो इस वजह से है कि आपको इस जुमले के मानी मुतय्यन ना हुए हो कि मुझसे क्या पढ़वाना चाहते हैं, ठीक है, बस इकरा बोला ना जिब्राइल अलैहि सलाम ने, तुम इकरा क्या, मतलब व्हाट शुड आई रीड, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं समझ में आया, ठीक है। तो चूंकि मानी मुतय्यन नहीं थे कि मुझसे क्या पढ़वाना चाहते हो, तो इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को एक्सक्यूज किया, या एक्सक्यूज करने की कोशिश करी। और ये अमर कोई खिलाफ शान नहीं है, या बावजूद तय मुराद के इस सबब से है कि इकरात का इस्तेमाल अक्सर लिखी हुई चीज को पढ़ने के मानी में आता है, ठीक है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक्सक्यूज कर लेना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ कोई बात नहीं है, ठीक है, कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सक्यूज कर लिया, तो गोया के बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं ना कि जिनके पास इल्म और समझ नहीं होती है, ठीक है, तो वो लोग जो है ना, क्योंकि उनको सही समझ नहीं हासिल होती है, सही इल्म हासिल नहीं होता है ना, लेकिन साथ साथ जो है वो एक मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ एक वो भी लगा हुआ होता है कि जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत भी हमने किसी ना किसी तरीके से जतलानी है, ठीक है। अब वो जो है ना, वो हर वो चीज जो कि उनको समझ में ना आए ना, उसको गुस्ताखी रसूल के जुमरे में ले जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो गुस्ताखी रसूल होती नहीं है वो चीज, लेकिन उनको चूंकि समझ में नहीं आ रही होती है, तो इस वजह से ना वो हर चीज को गुस्ताखी रसूल, जैसे कि हमारे बड़े बड़े उलमा कोई बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं, उनको समझ में नहीं आ रही होती, वो पीछे पड़ जाते हैं कि इन्होंने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी, इन्होंने तो आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान में गुस्ताखी कर दी, ठीक है, तो ये फकत उनकी जहालत की वजह से होता है या बदनीयती की वजह से भी होता है, क्योंकि उनको दुश्मनी होती है इन उलमा के साथ, तो उस दुश्मनी को जो है ना वो किसी ना किसी तरीके से भी जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो अभी तो 9:30 के पास अभी अच्छा 1 मिनट, इसमें भी आप कर सकते हो इंस्टॉल करें, पासवर्ड लॉग इंस्टॉल, 1 मिनट, तो क्या कर रहे हैं, रीजन हो सकते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ में नहीं आया कि क्या क्या पढ़वाना चाह रहे हैं मुझसे, ठीक है। और दूसरी रीजन ये हो सकती है कि जब कोई कहता है ना इकरा, तो इकरा कहने का मतलब ये होता है कि भाई कोई लिखी हुई चीज है वो मैं तुम्हें दूंगा, तुम उसमें से पढ़ना शुरू कर दो, इसलिए कि पढ़ने का यही मतलब होता है लिखी हुई चीज को पढ़ना, और नबी अलैहिस्सलाम जो हैं वो लिखी हुई इबारत को पढ़ने के ऊपर कादर नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जो है वो लिखा पढ़ यानी लिखना पढ़ना सीखा नहीं था, जब भी तो नबी उम्मी कहा जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और नबी उम्मी होना भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान थी असल में, ठीक है, इसको जो है वो एक नेगेटिव चीज में भी नहीं ले जा सकते, जाहिर सभी जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उम्मी थे, यानी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो इस वजह से ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक्सपेक्ट करते हुए कि भाई अब ये मुझे कुछ देंगे पढ़ने के लिए, अब मुझे तो पढ़ना नहीं आता, اس وجہ سے فرمایا ما انا بقاری، یعنی میں پڑھا بات نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجہ حرف شناس نہ ہونے کے، یعنی حرف شناس حرف کو پہچان، حرفوں کی پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی کہ اس حرف کو کیسے پروناؤنس کرتے ہیں، اس کو کیسے پروناؤنس کرتے ہیں اور ان کو جوڑ کر کے کیسے ورڈ بناتے ہیں، یہ ساری نالج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجہ حرف شناس نہ ہونے کے یہ عذر فرمایا ہو. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دبانا، ٹھیک ہے، یہ دبانا کیوں تھا؟ بے ظن غالب واللہ اعلم بحقیقت الحال. ٹھیک ہے، یعنی فرما رہے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ظن غالب یہ ہے، غالب گمان یہ ہے، اور اللہ تعالی زیادہ علم رکھتے ہیں حال کی حقیقت کا، بحقیقت الحالی. ٹھیک ہے، حال کی حقیقت کا اصل علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہمارا گمان یہ ہے کہ، ٹھیک ہے، کیا ہے کہ اس لیے ہوگا کہ آپ کے اندر باہر وحی کے تحمل کی استعداد پیدا کر دیں. ٹھیک ہے، جیسے کل ساری تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نسبت نکاسی تھی، لیکن اللہ کی وحی کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایز اٹ از نازل ہو رہی تھی، جیسا اللہ تعالیٰ کا کلام تھا، اور یہ جو طریقہ تھا وحی کے نازل ہونے کا، یہ پچھلے کسی نبی کے اوپر اس طریقے سے نازل نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ سارے نبیوں کے پاس ٹرانسلیٹڈ ورژنز آف وحی نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے، وہ عربی میں، حقیقتاً عربی میں تھی، پھر اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وحی عربی والی وحی نازل ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے تو ایک استعداد کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس استعداد کو پیدا کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ دبایا. ٹھیک ہے، اچھا آگے کہتے ہیں کہ لفظ رب سے اشارہ اس طرف ہے کہ ہم آپ کی مکمل تربیت کریں گے، یعنی ہم رب ہیں. رب مینز دی ون ہو نوز ہاؤ ٹو ڈو تربیت، ہو نوز ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف آل دا نیسیسٹیز، آل دا ضروریات. ٹھیک ہے، اس کو رب کہتے ہیں. تو رب کا لفظ جو مینشن کر دیا نا، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ہم وی ول ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ، ڈونٹ ورری. ٹھیک ہے، ہم آپ کی مکمل تربیت کریں گے، اس وحی کو کیسے آپ نے اٹھانا ہے، اس وحی کو کیسے پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، جو کچھ آپ نے کرنا ہے وی ول ٹیل یو، ڈونٹ ورری. اور نبوت کے درجات اعلیٰ پر پہنچا دیں گے. آگے رب کی صفت ہے، یعنی وہ رب ایسا رب ہے جس نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے رب کی صفت بیان کری، پھر اس کے بعد پیدا کرنے والی صفت کا ذکر کیا. اس وصف کی تخصیص میں، یعنی یہ جو پیدا کرنے والا وصف، اس کو کیوں ذکر کیا؟ تو اس کی جو تخصیص نا، یعنی خاص کر اس کا ذکر کیا، یہ کیوں کیا؟ اس میں یہ نقطہ ہے کہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اول ظہور اس نعمت کا ہوتا ہے، تو تذکیر میں اس کا مقدم ہونا مناسب ہے. ٹھیک ہے، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمارے اوپر نازل کی ہیں، تو اس میں سب سے پہلی نعمت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلی نعمت جو ہے وہ ہدایت کی نعمت نہیں ہے، سب سے پہلی نعمت جو ہے وہ کھانے پینے کی نعمت نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلی نعمت کیا ہے؟ بھائی اللہ نے ہمیں تخلیق کیا، یہ ہے سب سے پہلی نعمت. اگر اللہ تخلیق نہ کرتے تو نہ ہمیں کھانا پینا ملتا، نہ ہمیں جو ہے وہ خاندان ملتا، رشتہ دار ملتے، نہ ہمیں ہدایت کی نعمت ملتی، یعنی ہم ہوتے ہی نہیں، تو ہدایت کس کو ملتی بھائی؟ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہمیں پیدا کرنا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اول ظہور اس نعمت کا ہوتا ہے، یعنی تخلیق کی نعمت کا ہوتا ہے. تو تذکیر میں، یعنی جو ذکر کیا جانا ہے، اس میں بھی اس کا مقدم ہونا مناسب ہے، یعنی سب سے پہلے اسی کا تذکرہ کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی، کوئی سمجھ میں بات آ رہی ہے یا کوئی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے تو پوچھیں، آ رہی ہے تو اچھی بات ہے، تو الحمدللہ مقصد پورا ہو رہا ہے. کوئی چیز انکلیئر ہو بہت تیزی تیزی سے پڑھو. ہے بھی اصل میں یہ بہت زیادہ تفصیلی نا، اس میں یعنی پچھلی صورتوں میں ہم نے دیکھا تھا معروف مسائل بہت مختصر ہوتے تھے. ٹھیک ہے، اور معروف یعنی خلاصہ تفسیر اور بھی چھوٹا ہوتا تھا، لیکن اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خلاصہ تفسیر ہی کتنا لمبا ہے. ٹھیک ہے، یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جو ہے وہ بہت ماشاء اللہ اس کے اندر یعنی لطف آیا کہ خلاصہ تفسیر کو بھی اتنا لمبا لے کے. ویسے تو سورت خود بھی لمبی ہے دوسری صورتوں میں مقابلے میں، لیکن خلاصہ تفسیر میں انہوں نے اتنی ساری تفصیل لکھی جو کہ دوسری صورتوں میں انہوں نے نہیں لکھی تھی. پھر معارف و مسائل میں تو ماشاء اللہ کئی صفحے بھر دیے ہیں، جس میں بہت سارے معارف و مسائل واقعی کھول کھول کے بیان کیے ہیں. تو ٹھیک ہے، پھر خلقہ کی جو تخصیص کی نا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے، تو اس کی وجہ انہوں نے بیان کر دی. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں کہ اور نیز خلقہ دلیل ہے خالق پر، یعنی تخلیق کیا تو دس از پوائنٹنگ ٹو دا فیکٹ دیٹ دیر از اے خالق، دی ون ہو کریٹڈ، وہ ہے. ٹھیک ہے، اور سب سے اہم और अकदम मारिफत, और यानी सबसे अहम और अकदम मारिफत खालिक है। ठीक है, यानी खालिक की मारिफत, यानी ये जानना कि कोई खालिक है, सब कुछ जो है वो खुद ब खुद वजूद में नहीं आ गया। ठीक है, तो यही फरमाया कि ये सबसे अहम बात है और सबसे अकदम यानी सबसे ज्यादा पहले आने वाली बात वो मारिफत खालिक है। ठीक है, इसी वजह से जो साइंसदान किस्म के लोग होते हैं ना, ये दूसरी चीजों को हिट करने के बजाय डायरेक्ट जो है वो ना तखलीक को हिट करते हैं। क्या कहते हैं कि जी कोई खालिक नहीं है, बल्कि सारी चीजें जो है खुद से वजूद में आ गई। ठीक है, तो यानी हम तो समझते थे कि डार्विन थ्योरी जो है वो खत्म हो चुकी। ठीक है, लेकिन खैर समझते तो क्या थे, स्टीफन हॉकिंस का तो हमें पता था, वो तो बड़ा यानी उसका मुकाम है, बड़ा उसकी इज्जत की जाती है। ठीक है, तो इवन इतना कुछ होने के बावजूद भी, जबकि डार्विन थ्योरी को इतना निगेट भी कर दिया गया, साइंसदानों ने खुद ही निगेट किया, ये अभी भी यही कहता था कि जी कोई खुदा नहीं है, सब कुछ खुद ही से खुद ब खुद ही हो गया। खैर, जिसके नसीब में अल्लाह ने हिदायत ना लिखी हो तो उसके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर भी हम जो हमारे मुसलमान नौजवान जो हैं, अच्छा हत्ता के अफसोस की बात तो यह है कि दीनदार मुसलमान नौजवान वो भी जो है वो स्टीफन हॉकिंस को जो है वो अपना यानी आइडियल बना के रखे हैं, उसकी वो दकीक किस्म की उसने बातें लिख दी हैं, तो इतना इम्प्रेस हो जाते हैं कि जी यानी अपने दीन ही को डाउट करना शुरू हो जाते हैं। और कुछ लोग जो है वो दीन को डाउट नहीं करते, जहाँ तक कि भाई डर लगता है ना कि दीन को डाउट कर दिया तो कहीं काफिर ना कहला दिए जाएं और कहीं हमारे ऊपर कुफर का फतवा ना लग जाए, तो वो दीन को डाउट नहीं करते, तो वो दीन वालों को डाउट कर देते। तो दीन वालों को डाउट करना तो वैसे ही हलाल है, ठीक है, उसका तो कोई मसला ही नहीं है, तो दीन वालों को डाउट करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि जी ये जो मारिफ व मसाइल यानी ये जो असरार व रुमूज स्टीफन हॉकिंस के ऊपर खुले, ये हमारे उलमा और मशायख पर क्यों नहीं खुलते। आप जरा सवाल सुने कि ये जो मारिफ व मसाइल, ये जो नहीं असरार व रुमूज जो है स्टीफन हॉकिंस के ऊपर खुले, क्या असरार व रुमूज खुले उसके ऊपर कि जी ब्लैक होल होता है और ये जो है वो क्वांटम फिजिक्स ये होती है और ये होता है, ये असरार व रुमूज इनके ख्याल में। ठीक है, तो ये हमारे उलमा और मशायख पर क्यों नहीं खुलते। ठीक है, यानी दीन पर एतराज तो नहीं कर सकते ना, डर लगता है दीन पर एतराज करने से। ठीक है, तो चलो भाई उलमा और मशायख पर एतराज कर देते हैं, उनको तो वैसे भी कोई पुरसान हाल है नहीं। ठीक है, वो तो वैसे ही क्या यानी हलाल है उनका, उनकी इज्जत उनकी नामूस तो वैसे ही हलाल है हमारे लिए, तो इस तरीके से हम सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे जो अहम बात है एक मोमिन के लिए वो अल्लाह ताला की तखलीक की मारफत हासिल होना है, और जो शख्स उसी का इनकार करते उससे इम्प्रेस होना एक मोमिन के लिए ये कैसी बात है। तो इसका मतलब ये होता है असल में कि हमारे दीन के अंदर असल में ना बहुत ज्यादा नुक्स है, बहुत ज्यादा हमारे दीन में दरार, इतने कच्चे हैं हम असल में अपने दीन, इसी वजह से हम ऐसी बातें करते हैं। खैर, आगे बतौर तफसीस बात तामीम के इरशाद है कि, ठीक है, यानी अब तफसीस बात तामीम के जो खालिक का की मारफत का इन्होंने तस्करा किया ना अल्लाह ताला ने खालिक का, अब ये खालिक तो हर चीज कर, हर चीज उसने तख्लीक करी। ठीक है, तो अब ये इसमें उमूमियत है, यानी एक जनरलिटी है कि हर चीज को तख्लीक करने वाला। ठीक है, अब उसके बाद इसको जो है वो नैरो डाउन कर रहे हैं। ठीक है, तख्सीस बात तामीम का मतलब क्या कि पहले एक जनरल बात कर दी, अब उसको नैरो डाउन कर रहे हैं। तो नैरो डाउन किस तरह से कर रहे हैं, तो फरमाते हैं कि जिसने सब मखलूकात में से बिलखसूस इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। ठीक है, यानी सारी मखलूकात का जिक्र करके अब इंसान की बात कर रहे हैं कि इंसान को कैसे पैदा किया, खून के लोथड़े से पैदा किया। ठीक है, इस तख़सीस बात तामीम में इशारा है कि नेमत खल्क में भी आम मखलूकात से ज्यादा इंसान पर इनाम है कि उसको किस दर्जे तक तरक्की दी, कि सूरत कैसी बनाई, अकल व इल्म से मुशर्रफ बनाया, बस इंसान को ज्यादा शुक्र और जिक्र करना चाहिए। ठीक है, यानी दूसरों के मुकाबले में इंसान को जो मुकाम दिया है अल्लाह ताला ने, तो उसको तो और भी ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन मामला उल्टा है कि इंसान जो है वो इवन दूसरे जानवरों से भी कम जिक्र करता है अल्लाह ताला। जानवर जो है वो सुबह शाम जिक्र करते हैं, सारी चिड़ियां जो है आप सुबह को जरा निकले वॉक के ऊपर तो हर चिड़िया जो होती है दरख्त के ऊपर वहां पर एक शोर मचा हुआ होता है, शाम को इसी तरीके से एक शोर मचा हुआ होता है। ठीक है, चिड़ियाओं का वो क्या कर रही होती है, तस्बीह कर रही होती है, और हम क्या कर रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं या टाइम जाया कर रहे होते हैं खराफात के अंदर। तो इंसान को तो ज्यादा करना चाहिए था, वो उल्टा कम करता है। तो फरमाया कि क्या देखो, अच्छा ठीक है, तो फरमाया कि इसको किस दर्जे तक तरक्की दी, किस, अच्छा तख्सीस अलग की, फिर तख्सीस क्यों करी, यानी गोश्त का लो थोड़ा, तो अलग की शायद इसलिए है कि ये एक बरजखी हालत है, कि इसके कबल नुतफा और गजा व उनसर है, और इसके बाद मुदगा और तरकीब इवाम व नफख रूह है। ठीक है, यानी ये जो अलग इंसान जिस जिस वक्त होता है अलग की शक्ल में, एक गोश्त के लोथड़े की शक्ल में, तो ये एक बरजखी हालत है। बरजख जो है वैसे तो पर्दे को कहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुराद ये है इंटरमीडियरी हालत, जिसको ट्रांजिट लोकेशन कहते हैं। ठीक है, जब आप किसी मुल्क, जैसे यहाँ की, यहाँ से आपने पाकिस्तान की फ्लाइट ली, तो बीच में अगर आपको बहरीन में ट्रांजिट लेना पड़े, ठीक है, तो ट्रांजिट कहलाता है सेंट्रल लोकेशन, यानी यू आर नॉट, यानी यू आर देयर टेम्पोरारीली, फिर वहां से जाकर के आप असल डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे। तो अलग जो है ना, ये भी एक ट्रांजिट लोकेशन है। तो फरमाते हैं कि बिकॉज असल में बरज़ख क्या है, जब दुनिया की जिंदगी से हम जाएंगे ना मरने के बाद, तो हम आलम बरज़ख में जाएंगे, और आलम बरज़ख में कुछ अरसा रहने के बाद फिर हम आलम आखिरत में जाएंगे। ठीक है, तो आलम बरज़ख भी ट्रांजिट लोकेशन है, बिटवीन दुनिया एंड द आखिरत। तो ये भी एक बरज़खी हालत है कि इसके कबल नुतफा, ठीक है, यानी जिसको के स्पर्म कहते हैं या सीमन कहते हैं, तो नुतफा और गजा और उनसा रहेंगे। नुतफा होता है, फिर वो एग के साथ जो है वो उसकी यानी फर्टिलाइजेशन होती है, फिर जो है वो उसके अंदर जो गजा और सेल्स वगैरह, यानी गजा दाखिल होती है जो जो फर्टिलाइज हो जाता है, तो फिर उस जो माँ माँ जो खाती है, तो उससे उसको गजा मिल रही होती है, तो उसके अंदर फिर बॉडी सेल्स वगैरह डेवलप होने शुरू होते हैं। ठीक है, तो बॉडी सेल्स डेवलप होने से फिर उसका साइज बढ़ता है और वो गोश्त के लोथड़ी की शक्ल इख्तियार कर जाता है। ठीक है, उसके बाद यानी जिसको के अल्ट्रासाउंड मशीन से भी फिर आप जरा मेहनत से देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो गोश्त के लोथड़े के बाद क्या होता है कि फिर वो मुदगा बनता है, यानी बाकायदा एक बड़ी शक्ल वो इख्तियार करता है, जैसे कि एक पूरी फॉर्म उसकी बनती है। ठीक है, बेबी की पूरी फॉर्म बनती है उसकी, तो फिर उसके अंदर जो है वो हड्डियां, इजाम कहते हैं हड्डियों को, ठीक है, तो हड्डियां वगैरह फिर उसके बाद बननी शुरू होती हैं, और नफख रूह है, यानी 40 दिन जब गुजर जाते हैं, तो फिर उसके बाद एक फरिश्ता आता है जो कि उसके अंदर अल्लाह के हुक्म से रूह फूंकता है। ठीक है, तो अलग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुकाम है इंसान की की पैदाइश के अंदर। ठीक है, तख्लीक में नहीं, इंसान की पैदाइश में। ठीक है, तो इस वजह से अलग का तस्करा किया यहाँ पर, ये एक एहतमाली तशरीह करी है हजरत ने। ठीक है, यानी शायद करना का लफ्ज इस्तेमाल करके ये वाली एक्सप्लेनेशन उन्होंने बयान की है। फरमाते हैं कि पस गोया वो जमी अहवाल मुतकदमा व मुतअखरा के दरमियान है। मुतकदमा मतलब पहले वाले अहवाल, और अहवाल मुतअखरा यानी बाद वाले अहवाल के दरमियान में है अलग वाली हालत। आगे किरात को मकसूद अहम करार देने के लिए इरशाद है कि, ठीक है, यानी अब बात हो गई जी, अलग की भी बात हो गई, रब की बात हो गई, फिर खलक की बात हो गई, फिर अलग की बात हो गई, अब क्या कह रहे हैं, इकरा व रब्बुकल अकरम। ठीक है, तो अब किरात की के जो हुक्म था, इस हुक्म को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो फरमा रहे हैं कि किरात को मकसूद अहम, यानी एक अहम मकसद करार देने के लिए इरशाद है कि आप कुरान पढ़ा कीजिए। ठीक है, इकरा व रब्बुकल अकरम, ठीक है कि आप कुरान पढ़ा कीजिए। हासिल ये है कि पहले अमर यानी इकरा बिस्म रब्बिक से ये शुबा ना किया जाए कि यहाँ असल मकसूद जिक्र इस्मुल्लाह है। ठीक है, यानी इकरा बिस्म रब्बिक लदी, उसमें क्या हुक्म था कि अल्लाह के नाम से आप पढ़िए, तो कोई अगर खाली पहली आयत को पढ़े ना, तो उसके जहन में ये बात आ सकती है कि इसका मतलब ये है कि मुझे अल्लाह ताला के नाम का जिक्र करना चाहिए, अल्लाह ताला के नाम से पढ़ना चाहिए चीजों को। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जी, जैसे कि हमारी जिंदगी का मकसद जो है ना, वो अल्लाह ताला का जिक्र करना है। ठीक है, अल्लाह ताला के नाम का जिक्र करना है, इस्मुल्लाह। ठीक है, तो वो बंदा फिर अगर खाली पहली ही आयत पढ़ता और पहली ही आयत होती, तो वो समझता कि जी, मेरी जिंदगी का मकसद है अल्लाह का नाम का जिक्र करते रहो। ठीक है, लेकिन दूसरी दफा जो इकरा का हुक्म आया ना, तो वहां पर ये क्लियर कर दिया कि किराअत खुद भी फी नफसेहा मकसूद है। किराअत खुद भी फी नफसेहा यानी अपने नफ्स के अंदर मकसूद है, क्योंकि तबलीग का जरिया यही किराअत है। राइट, तबलीग का जरिया यानी कैसे तबलीग करते थे नबी अलैहिस्सलाम, नबी सल्लम की तबलीग का जरिया व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, ठीक है, और ये रिकॉर्डेड बयानात नहीं थे, बल्कि नबी सल्लम की तबलीग का जरिया क्या था, आप की तबलीग का जरिया तिलावत कुरान था, आप कुरान की तिलावतें लोगों के सामने किया करते थे, पढ़ पढ़ के सुनाया करते थे, जब तो ये लोग जो है वो उससे बचने के लिए अपने कानों में उंगलियां ठूस लेते थे कि ये तो ऐसा जादू वाला कलाम है, ऐसा असर वाला कलाम है कि ये हमारे कान में जाता है तो हमें कुछ होने लगता है, हमें हमारा दिल चाहता है कि हम इनकी बात मान लें, ठीक है, तो वो कानों में उंगलियां ठूस लेते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे दावत दिया करते थे, कुरान की तिलावत करके दावत दिया करते थे। हमारे मशाइख में से भी कुछ ऐसे लोग गुजरे हैं और आज भी मौजूद हैं कि जब वो मुखालफीन के पास जाते हैं और अपनी बात रखते हैं ना, तो वो बयान करने की बजाय वो कुरान की तिलावत शुरू कर देते हैं, ऐसे तिलावत करते हैं कि सुनने वाले अश अश करके झूमना शुरू हो जाते हैं और उनकी मुखालफत छोड़ देते हैं उसके बाद, ठीक है। हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ऐसी आता है कि उनकी कुरान की तिलावत ऐसी होती थी कि यानी मुसलमान तो मुसलमान, हिंदू तक जो है ना वो हिल जाते थे उनकी कुरान की तिलावत सुन करके। हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी भी कुरान की तिलावत के बारे में आता है कि वो जाते थे कहीं पर, वो मतलब बात तो खैर करते ही थे, ऐसे नहीं कि सिर्फ कुरान की तिलावत करते थे और बात करना उनको नहीं आती थी, नहीं, बल्कि वो अक्सर कुरान की तिलावत ही करके अपना मकसद पूरा कर लिया करते थे, और उनकी तिलावत भी ऐसी होती थी कि लोगों के ऊपर असर होना शुरू हो जाता था। तो खैर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो काम ही यह था कुरान की तिलावत करना, यतलु अलैहिम आयाती ही, ठीक है, कि उनके बेसत के मकासद में से पहला मकसद क्या था कि उनके ऊपर अल्लाह ताला की कुरान की तिलावत, आयात को तिलावत करें, ठीक है। तो फरमाया कि क्योंकि तबलीग का जरिया यही किराअत है और तबलीग ही असल काम साहिब वही का है, ठीक है, यानी जिसके ऊपर वही नाजिल हुई उसको साहिब वही कहते हैं, तो उसका जो असल जॉब डिस्क्रिप्शन है, पर्पस है उसका, वो क्या है, तबलीग, ठीक है। अब इससे हमारे माशाल्लाह तबलीग जमात वाले सुन करके बहुत खुश होंगे कि हाँ हम भी तो ये कहते हैं ये असल काम ही है, ठीक है, तो भाई असल काम बेशक ये है नंबर वन, लेकिन उसमें ये बात याद रखें कि साहिब वही की बात हो रही है, ठीक है, हमारी बात ऐसी नहीं हो जाती, ठीक है, साहिब वही की बात हो रही है नंबर वन, और फिर ये भी बात याद रखें कि साहिब वही ने जो दावत और तबलीग का काम किया था ना, तो उससे पहले उनके साथ क्या क्या कुछ हुआ था, ठीक है, तो वो भी हमारे साथ हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, हमारे साथ तो कुछ भी ऐसा नहीं होता है और हम समझना शुरू जाते हैं कि हम ही हैं बस दुनिया में तबलीग करने वाले, ठीक है, तो भाई एक बैकग्राउंड होता है, साहिब वही की तरबियत हुई थी, साहिब वही के साथ ये सारे मामलात हुए थे, तवज्जुहात भी पड़ी थी, उनके सीने को शक भी किया गया था, तो आपके सीने को तो बेशक शक नहीं किया जाएगा, आपके ऊपर तो जिब्रील अलैहि सलाम आके तवज्जुहात नहीं डालेंगे, लेकिन आपके दर्जे में रहते हुए आपने अपने दिल को कुछ साफ तो करना पड़ेगा ना, कुछ आपने आदाब सीखने पड़ेंगे ना, कुछ मसाइल सीखने पड़ेंगे ना, ऐसी को थोड़ी आप तबलीग करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तबलीग जो है ना, असल में ये हम लोग करते नहीं है, असल में जो तबलीग जमात का काम था ना, जो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ने शुरू करवाया था, वो असल में इस्लाह का काम था, मुसलमानों की अपनी इस्लाह हो जाए इस तरतीब के जरिए से, छः नंबर के जरिए से ना, जो लोग इस छः नंबर के ऊपर अमल करते हैं ना, उनकी अपनी इस्लाह हो जाए, ठीक है, हमने अपनी इस्लाह को छोड़ दिया, ठीक है, अपनी इस्लाह की अब किसी को फिक्र ही नहीं है और दुनिया की इस्लाह की फिक्र खाली रह गई है, ठीक है, तो ये तबलीग नहीं है, ये दावत तबलीग का काम नहीं है, असल काम जो है वो अपनी इस्लाह का काम है, फिर उसके बाद फिर अल्लाह ताला दूसरों की इस्लाह का काम लेते हैं। बहरहाल इस जुमले से हमें यानी इस जुमले की बहुत ज्यादा गहराई है और उसको गहराई के साथ ही समझने की जरूरत है, लेकिन हकीकत बहरहाल यही रहेगी कि साहिब वही का काम तबलीग था, ये असल काम था, और मुसलमान के लिए भी जरूरी है कि वो अपने आप को ऐसा बनाए कि वो काम कर सके जो कि उसके नबी का काम था, ठीक है, लेकिन अपने आप को ऐसा बनाए कि वो काम कर सके जो कि उसके नबी का असल काम था, ठीक है, तो अपने आप को बनाना, ये कम से कम हम शुरू कर दें ताकि फिर हम भी वो काम कर सकें। बस इस तकरार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और मामूर बितबलीग होने का इजहार भी हो गया, ठीक है, यानी ये जो इकरार का जो तकरार हुई, दो मरतबा ये हुक्म आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत भी क्लियर हो गई और मामूर बितबलीग के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग के काम के ऊपर मामूर किया गया है, अपॉइंट किया गया है, इसका भी इजहार हो गया, और आगे उस उजर को रफा कर देने की तरफ इशारा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पेश किया था, कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। उसके लिए इरशाद फरमाया कि आपका रब बड़ा करीम है, जो चाहता है अता फरमाता है, और वो ऐसा है जिसने लिखे पढ़ों को नवश्ता कलम से तालीम दी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक्सक्यूज किया था, तो अब अल्लाह ताला ने रब करीम, रब यानी इतराब इसमें रब्बिकल अकरम, सबसे ज्यादा करीम रब। तो करीम जो होता है वो क्या करता है कि वो जरूरियात जो होती है ना, उनका खुद से इदराक करके उन जरूरियात को पूरा कर देता है। ठीक है, उससे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मांगना जो है वो हमारे अपने फायदे के लिए हम मांगते तो हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमारी तकरीबन सारी ही जरूरियात जो होती है बिन मांगे पूरी करते हैं। हमको एक ही चीज के लिए कुछ नहीं मांगते हैं अल्लाह ताला से। ठीक है, रोजाना खाना खाते हैं, क्या हमने रोजाना के खाने का अल्लाह ताला से मांगा होता है? ठीक है, कितनी जरूरियात हैं, बल्कि तकरीबन सारी जरूरियात तो बिन मांगी पूरी हो रही है। वो एक दो चीजें रह जाती हैं। ठीक है, अच्छी जॉब, अच्छा घर, अच्छा अच्छी गाड़ी, ठीक है, या अच्छी बीवी, ठीक है, इनकी के लिए हम दुआएं मांग लेते हैं, बाकी को थोड़ी चीजों के लिए दुआएं मांग रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने अकरम का जो लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल किया, तो इसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढारस देना मकसूद है कि हम आपको सब कुछ अता फरमा देंगे, और बाकी ये कि आप जो मां ना बेकारी की वजह से परेशान है कि जी मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो अल्लाह ताला तो वैसे वो है अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, कि उसने कलम के जरिए से सिखाया है इल्म को। तो जब उसने सबको इल्म सिखाया है तो आपको क्यों नहीं सिखा सकता भाई? तो वो आपको सिखा देगा। तो फरमाए कि जिसने लिखे पढ़ों को नवश्ते कलम से तालीम दी, और अमूमन व मुतलकन इंसान को दूसरे जराए से इन चीज़ों की तालीम दी जिनको वो ना जानता था। मतलब ये कि अव्वल तो तालीम कुछ किताबत में मुनहसर नहीं, ठीक है, कि भाई सिर्फ किताबत के जरिए से तालीम दी जाए। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने कलम के जरिए से भी तालीम दी, और अल्लम अल इंसाना मालम या अलम, यानी कलम के अलावा भी अल्लाह ताला ने सारा इल्म अल्लाह ही ने दिया है। ठीक है, तो किताबत के ऊपर इल्म मुनहसर नहीं है, क्योंकि दूसरे तरीकों से भी तालीम का मुशाहिदा किया जाता है। ठीक है, तो आजकल तो और भी ज्यादा यानी तालीम जो है वो किताबों में नहीं, बल्कि दूसरे टीचिंग के रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं जिसके जरिए से इंसान इल्म हासिल करता है। सानियन असबाब मुअस्सर बिज़ात नहीं, मुसब्बिबे हकीकी और इल्म दिल देने वाले हम हैं। ठीक है, तो असबाब जो आप इख्तियार करते हैं इल्म हासिल करने के लिए, जैसे कि कलम एक सबब है इल्म हासिल करने के लिए, तो कलम जो है वो इन इटसेल्फ मुअस्सर बिल्ज़ात नहीं है, कि यानी उसके अंदर जो है वो असर जो है वो कलम की ज़ात में मौजूद हो। ठीक है, नहीं, उसके अंदर जो असर है वो अल्लाह डालता है तो असर होता है, अगर अल्लाह नहीं डालता तो कलम के अंदर असर नहीं होता। आम सी मिसाल है, यानी बच्चों वाली, कि जी कलम के अंदर जो होती है वो इंक होती है। ठीक है, तो इंक अगर हो तो कलम लिखता है ना, और अगर इंक ना हो तो कलम तो है आपके हाथ में लेकिन फिर भी वो नहीं लिखेगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से इल्म जो है वो इंक से भी ज्यादा अहम चीज है। तो इल्म जो है वो तो अल्लाह ताला देता है, बेशक आपके पास कितनी अच्छे अच्छे कलम मौजूद हो, आपको कितनी अच्छी जो है वो खत्ताती करनी आती हो, हैंड राइटिंग आपकी बेहतरीन हो, लेकिन अगर अल्लाह ताला आपको इल्म ना देना चाहे तो आपके ये सारे के सारे हुनर जो है वो बेकार है, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो मुअस्सर बिज़ात जो है वो कलम नहीं है, मुसब्बिबे हकीकी और इल्म देने वाले हम हैं। बस गो आप लिखना नहीं जानते, मगर हमने जब आपको किरात का अमर किया है, यानी आपको इकरा का हुक्म दिया, तो हम दूसरे जरिए से आपको किरात और हिफ्ज़ उलूम वही पर कुदरत दे देंगे, यानी वही के उलूम को महफूज करने के ऊपर हम आपको कुदरत दे देंगे। चुनाचे ऐसे ही हुआ, पस इन आयात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और उसके मुकदमात व मुतम्ममात का पूरा बयान हो गया। ठीक है, यानी इन चंद आयात के अंदर आप सल्लम की नबूवत के जो इनिशियल बातें थी, मुकदमात और मुतम्ममात यानी तकमीली बातें, उन सब का पूरा बयान हो गया, मुकम्मल बातें कवर हो गई इसके अंदर। और चूंकि साहिब नबूवत की मुखालिफत गायत दर्जे का गुनाह और शनी अमर है, अब यहाँ पर ना पांच आयतों के बाद की बात शुरू हो रही है। ठीक है, जिसके बारे में यानी जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कल्ला इन्नल इंसाना लयतगा। ठीक है, तो ये सारी तफसीलात फिर बाद में नाजिल हुई थी ये वाली आयत, और इनकी तफसीर जो है वो अब शुरू कर रहे हैं कि स्थानियन नहीं, ये तो हो गया सॉरी, कि हाँ, चूंकि साहिब नबूवत की मुखालिफत غایت درجے کا گناہ یعنی الٹیمیٹ درجے کا گناہ اور شنی یعنی گندہ امر ہے۔ اس لیے آئندہ آیات میں جن کا نزول آیات اولا سے یعنی فرسٹ فائیو آیات سے ایک مدت کے بعد ہوا ہے، آپ کے ایک خاص مخالف یعنی ابو جہل کی مذمت عام الفاظ سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا لفظ تو اس کا نام تو نہیں یہاں پر آیا لیکن عمومی الفاظ میں نا ابو جہل ہی کی مذمت کی جا رہی ہے، عام الفاظ سے ہے جس میں دوسرے مخالفین بھی شامل ہو جائیں گے، یعنی عمومی اگر اس کا نام لے لیتے جیسے کہ سورہ لہب کے اندر ابو لہب کا نام آ گیا تو سورہ لہب جو ہے وہ ابو لہب اور اس کی بیوی کے لیے مخصوص ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر نا چونکہ ابو جہل کا نام نہیں لائے تو ابو جہل ہے تو مقصود اس کا یعنی ٹارگٹ تو ابو جہل ہی ہے، لیکن عمومی الفاظ کی وجہ سے اب یہ ہر اس شخص کے اوپر اپلائی ہو جائیں گے جو کہ ابو جہل جیسی حرکتیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ ابو جہل کی مذمت عام الفاظ سے ہے جس میں دوسرے مخالفین بھی شامل ہو جائیں گے، جس کا سبب نزول یہ ہے، ٹھیک ہے، اب سبب نزول یعنی شان نزول بتا رہے ہیں ان بعد والی آیات کا، ٹھیک ہے، یعنی آیت نمبر 6 سے لے کر کے آیت نمبر 19 تک کا۔ اچھا بائے دی وے وہ سجدے والی آیت تلاوت کری تھی تو کسی کو یاد نہ رہا جن میں بھی شامل ہوں، مجھے بھی یاد نہیں تھا، تو سجدہ تلاوت جو ہے وہ کر لیا جائے کلاس کے بعد۔ اچھا تو سبب نزول یہ ہے کہ ایک بار ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، کہنے لگا کہ میں آپ کو اس سے بارہا منع کر چکا ہوں، آپ نے اس کو جھڑک دیا تو کہنے لگا کہ مکہ میں سب سے بڑا مجمع میرے ساتھ ہے، یعنی سب سے بڑا گروپ میرا ہے، میرے حمایتیوں کا گروپ ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر اب کی بار میں تمہیں نماز پڑھتے دیکھوں گا تو نعوذ باللہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا۔ چنانچہ ایک بار وہ اس قصد سے چلا، یعنی آپ سے نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے دیکھ لیا، اس کو غصہ آیا تو وہ آنے لگا کہ آپ سے کی گردن کے اوپر وہ پیر رکھے گا۔ ایک منٹ ظہور کی ہوگا، تعجب ہے پر اس صورت استفام، کیونکہ حمزہ استفامیہ استعمال کیا تو حمزہ استفامیہ استعمال کر کے تعجب کر رہے ہیں اصل میں کہ اے مخاطب، یعنی عام خطاب ہے انسانوں سے کہ اے مخاطب عام، بھلا اس شخص کا حال تو بتلا جو ہمارے ایک خاص بندے کو منع کرتا ہے جب وہ بندہ نماز پڑھتا ہے، مطلب یہ کہ اس شخص کا حال دیکھ کر تو بتلا کہ اس سے زیادہ عجیب بات بھی کوئی ہے، حاصل یہ کہ نمازی کو نماز سے روکنا نہایت ہی بری اور عجیب بات ہے۔ آگے اسی تعجیب کی یعنی اس تعجب کی تاکید و تقویت کے لیے مقرر فرماتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں کہ اے مخاطب، یعنی عام مخاطب، یعنی اللہ تعالیٰ سارے انسانوں سے مخاطب فرما رہے ہیں کہ بھلا یہ تو بتلا کہ اگر وہ بندہ جس کو نماز سے روکا گیا ہے وہ ہدایت پر ہو، کہ جو کمال لازمی ہے، یعنی یا وہ دوسروں کو بھی تقویٰ کی تعلیم دیتا ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز سے روکنا کتنی بری بات ہے، لیکن اب وہ جو نماز پڑھنے والا بندہ ہے وہ کوئی اللہ کا ولی بھی ہو، یعنی ہدایت کے اعلیٰ درجے پر فائز بھی ہو، اب اس کو نماز سے روکنا تو اور بھی زیادہ نقصان کا باعث ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ایک عام آدمی کے ساتھ برا کرنا یہ بھی نقصان ہوتا ہے، لیکن ایک اللہ کے ولی کے ساتھ نقصان کرنا یہ یعنی مرکب نقصان ہوتا ہے، اس کے اندر زیادہ آپ کو گناہ ملے گا، زیادہ نقصان ہوگا، اور پھر وہ اللہ کا ولی جو ہے وہ ایسا ولی بھی نہ ہو جو کہ اپنے کام سے کام رکھتا ہو، بلکہ وہ دوسروں کو بھی ہدایت پر لانے کا کام کر رہا ہو۔ اب ایسا بندہ جو ہوتا ہے نا یہ ولایت کے سب سے اونچے درجے پر ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں ہمارے مشائخ کی زبان میں کہتے ہیں قطب الارشاد، ٹھیک ہے، جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں نا ان کے باقاعدہ درجے ہوتے ہیں، ایک درجہ جو ہے وہ ابدال کہلاتا ہے، ابدال وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ولایت کے بہت اونچے درجے پر ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بس ان کو دوسروں سے غرض نہیں ہوتی کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، ان کے لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کریں ان کے، ٹھیک ہے، تو ان کی ولایت ایک درجے کی ہوتی ہے لیکن وہ ہائیسٹ درجے کی ولایت نہیں ہوتی، اس کے اوپر جو درجہ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے قطب الارشاد، قطب، اور قطب بھی قطب الارشاد یعنی جو کہ ارشاد، دعوت و ارشاد کا کام کرتے ہیں اللہ کے اولیاء، ٹھیک ہے، وہ سب سے اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی درجہ جو ہے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قطب الارشاد والا درجہ ہے اس زمانے کے اعتبار سے سب سے زیادہ اونچا درجہ، ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ نماز بھی پڑھا ہے، پھر وہ ہدایت کے بھی اعلیٰ درجے پر فائز ہے، اور پھر وہ اس کے اوپر کیا کہ کیا ہاں ہدایت پر ہو کہ جو کمال لازمی ہے، یا وہ دوسروں کو بھی تقویٰ کی تعلیم دیتا ہو، یعنی قطب الارشاد والے درجے پر بھی فائز ہو، جو کمال متعدی یعنی دوسروں کی نفع رسانی ہے، اور شاید کلمہ تردید لانے سے اشارہ اس طرف ہو کہ اگر ان میں سے ایک صفت بھی ہوتی تب بھی منع کرنے والے کی مذمت کے لیے کافی تھی، चढ़ जाए कि दोनों सिफतें इसके अंदर मौजूद हो, ठीक है। तो यानी अबू जहल कितनी बुरी बात करता था कि वो एक आम मुसलमान को भी नहीं, एक आम अल्लाह की वली को भी नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल को की मुखालफत करता था। तो फरमाया कि ए मुखातब आम, भला ये तो बतला कि अगर वो शख्स यानी जो मना करने वाला है दीन हक को झुठलाता हो और दीन हक से रूगरदानी करता हो, यानी ना अकीदा रखता हो और ना अमल करता हो, ठीक है। यानी झुठलाना का मतलब कि वो अकीदा भी सही नहीं रखता और वो दीन हक से रूगरदानी यानी अमल भी वो नहीं करता दीन वाले, ठीक है। यानी ना उसका अकीदा ठीक है ना उसका अमल ठीक है। यानी अव्वल तो ये देखो कि नमाज से मना करना कितना बुरी बात है, फिर बिलखसूस ये देखो कि जब मना करने वाला एक गुमराह और जिसको मना कर रहा है वो हिदायत का आला नमूना है, तो ये कितनी अजीब बात है। यानी अजीब पैराए में अल्लाह ताला जो है ना वो अबू जहल की से जो है वो नफरत का इजहार कर रहे हैं, ठीक है। और अबू जहल जैसे जितने भी लोग हैं उन सब के साथ नफरत का इजहार कर रहे हैं, ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं, यानी क्या अजीब मामला है। आगे इस मना करने पर उसको वईद है, यानी क्या इस शख्स को ये खबर नहीं कि अल्लाह ताला उसकी सरकशी और उससे पैदा होने वाले अमाल को देख रहा है और इस पर सजा देगा। आगे इस पर जजर है, यानी उसको हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। कल्ला क्या है? जजर, हरफ जजर और फिर तंबी, उसको हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर ये शख्स अपनी इस हरकत से बाज ना आएगा तो हम उसको पट्ठे पकड़ कर, जो कि दुरूह और खता में आलूदा पट्ठे हैं, जहन्नुम की तरफ घसीटेंगे। पट्ठे मतलब नासिया, ठीक है, लनसफाम बिन नासिया। तो नासिया जो है वो लिखते हैं कि सर के अगले बालों को कहा जाता है, जिनको उर्दू में पट्ठे बोलते हैं। उसकी सिफत में काजबा खातिया मजाजन फरमाया, यानी जैसे कल बात हुई थी कि जैसे हम कहते हैं जुबान झूठी है, तो जुबान असल में झूठी नहीं होती, वो तो बंदे का नफ्स झूठा होता है, ठीक है, लेकिन जुबान को आप झूठा कह देते हैं। उसी तरीके से जो पट्ठे हैं ना उनको झूठा करार दिया और उनको गुनाहगार करार दिया, तो ये मजाजन कहते हैं, हकीकत नहीं मजाजन। और उसको जो अपने मजमे पर घमंड है और अब हमारे पैगंबर को धमकाता है, तो ये अपनी मजलिस वालों को बुला ले, अपने हेल्पर्स को बुला ले, अगर उसने ऐसा किया तो हम भी दोजख के प्यादों को बुला लेंगे, ठीक है। चूंकि उसने नहीं बुलाया इसलिए अल्लाह ताला ने भी इन फरिश्तों को नहीं बुलाया। कमा रुवियत तिबरी अन क़तादा मुरसलन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ फ़अला अबू जहलन लअख़ज़तहुल मलाइकतु तु ज़बानियता उयानन, यानी कि अगर अबू जहल अपने अपने मजलिस वालों को बुलाने का काम कर लेता ना, तो मलाइका फरिश्ते जो है ना जो 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 ये अज़बानिया वाले थे पैदल प्यादा पाक फरिश्ते, तो वो उसको पकड़ लेते, ठीक है। आगे फिर ज्यादत जजर के लिए उसको तंबीह है कि उसको हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर आप इस नालायक की इन हरकतों की कुछ परवाह ना कीजिए, उसका कहना ना मानिए जैसा अब तक भी आपने नहीं माना, और बदस्तूर नमाज पढ़ते रहिए और खुदा का कुर्ब हासिल करते रहिए। इसमें एक लतीफ वादा है कि अल्लाह ताला आपको इन लोगों के जरर से महफूज रखेगा, क्योंकि नमाज से कुर्ब होता है और कुर्ब मूजब अजमत है। क्या है? इल्ला लिहुकमत खासा, बस ऐसे उमूर की तरफ जरा इल्तिफात ना कीजिए, अपने काम में लगे रहिए, ठीक है। तो ये खुलासे तफसीर मुकम्मल हुई। किसी को सवाल है? बहुत सारी चीजें थी इसके अंदर, बहुत यानी कोशिश करी कि एक एक मुश्किल लफ्ज को आपके सामने खोल के एक्सप्लेन कर दें, और कोई कमी कोताही रह गई होगी तो उसके लिए अगर आप एक दफा फिर इस रिकॉर्डिंग को सुन लें तो ये देखें तफसीलात आपके समझ आ जाएंगी। फिर अगर कोई सवाल दिन में आता है तो वो आप विकास में पूछ लीजिए। अल्फाज थोड़े मुश्किल थे और काफ़ी सारी उन्होंने यानी दकीक बातें इसमें फरमाई हैं, तो इस वजह से पूरा एक घंटा इस क्लास तफसीर को मुकम्मल करने में लगा। पिछले क्लास में तो सिर्फ एक पैराग्राफ ही पढ़ा था, आज ही तकरीबन पूरी क्लास तफसीर हुई है। तो इसके बाद अल्लाह ने तौफीक दी तो अगली क्लास में इंशाल्लाह हम आपको मसाइल शुरू करेंगे। ये बहुत ज़्यादा तफसील वाले हैं लेकिन वो भी एक क्लास में मुकम्मल नहीं होंगे, ठीक है। चलें इंशाल्लाह यहाँ क्लास खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।